आइए देखते हैं आयत नंबर 40 से तर्जमा पढ़ेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह जहां जहां जरूरत होगी हम इसको टच करेंगे। या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल जरा ख्याल करो मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। और क्या की थी? वो नेमत नबूवत की नेमत थी। यहाँ आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ने इनको बहुत प्यार से दावत दी है। याद रखिए कि ये कौम जिसको आज हम बनी इसराइल कहें या यहूद कहें बहुत सारी खूबियों की मालिक है। अल्लाह ताला ने इनको नबियों की नस्ल से उतारा। पीछे से सिलसिला सबका हजरत इब्राहिम से जुड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे इस्माइल और इसहाक। इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचपन में अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के नबी इब्राहिम ने मक्का के करीब एक जगह पे छोड़ दिया। इसका जिक्र हम सूरत इब्राहिम में पढ़ेंगे। दूसरा बेटा इसहाक था। हजरत इसहाक के बेटे याकूब थे और याकूब के फिर 12 बेटे। ये जो भी पूरा गिरोह है ये 12 नबियों की नस्ल है। अब आप सोचिए एक कौम जो नबियों की औलाद है उसमें कुछ खूबियां थी ना, बहुत खूबियां थी इनमें, आज भी हैं। ऑर्गेनाइज हैं, वक्त से पहले प्लान करते हैं, पाबंद है, वक्त के मेहनती कौम है, पूरी दुनिया को ये इशारों में अपने लगा सकते हैं। अल्लाह ने इनको बहुत टैलेंट दिया था। अल्लाह चाहते थे कि इनका ये टैलेंट दीन में लगे, लेकिन जब इनके दिलों में, और ख़ास तौर पर याद रखिए इनका बिगाड़ क्या, हर कौम का बिगाड़ उसके मजहबी तबके के बिगाड़ से शुरू होता है। इनके जो मजहबी लीडर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उनके अंदर जब दुनिया की मोहब्बत आई तो उन्होंने फिर तौरात के अहकाम को बदला, कभी चेंज किया, अभी कुछ किया, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, अब यहाँ जहाँ भी या बनी इसराइल आएगा ना तो अपने माइंड में रख लीजिए कि मदीना है, मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी बैठे और इर्द गिर्द यहूद की बस्तियाँ हैं। एक बनु कुरैज़ है, बनु कैनक है, बनु नज़ीर है, इनके छोटे छोटे फोर्ट्रेसेस होते थे, ये वहाँ रहते थे। अल्लाह यहाँ या बनी इसराइल कहकर मदीना के उस दौर के यहूद को पुकारता है। कह बनी इसराइलियो याद करो मेरी नेमत। यहां से आप देखिए कि अल्लाह ने इनको किसी बुरी चीज से तो नहीं बुलाया, नेमतों की तस्कीर तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरी ये नेमत यानी नबूवत की नेमत, तुम्हें मैंने स्किल्स दी, तुम्हें खूबियां दी, और साथ ही साथ क्या करो, वाउफू भी अहदी, तुम भी अहद पूरा करो। ये कौन सा अहद है? ये आगे सूरत मैदम में भी आएगा, लेकिन सिंपल समझ लीजिए कि अहद से मुराद ये था कि तौरात पे अमल करो। और एक अहद का दूसरा हिस्सा इनका क्या था कि जब तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेज दिए जाएं तो उनको मान लो। दो बातें लिख ले, अल्लाह ताला ने पिछले अंबिया कराम की कौमों से दो वादे लिए थे। नंबर एक, अपने वक्त की किताब पे अमल करो। ये आज हमें भी है कि नहीं? मुस्लिम्स को भी तो यही कहा गया ना कि कुरान को किताब हिदायत बनाओ, ये तो कॉमन है। दूसरा अहद क्या था? और उस अहद का दूसरा हिस्सा क्या था कि जब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें पता चल जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर मबूस हो गए तो तुम उनको मान लो। ये सिंपल सी बात है। ये अहद आज उम्मत मुस्लिमा से नहीं है। क्यों? कि अल्लाह के नबी खातमुन नबीजीन है। आज अगर यहूद और नसारा अपनी किताबों पर अमल करें तो उनको अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनना पड़ेगा। बात वाज़ह? आज बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि देखिए वो अपने दीन पे तो अमल करते हैं, फिर हम उनको क्यों गलत कहें या बुरा कहें। पहली बात है, हम गलत बुरा नहीं कह रहे, लेकिन इस आयत पे समझ लीजिए कि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दुनिया में आ जाएंगे तुम्हारी ये वैलिडिटी, तौरात की वैलिडिटी कुरान के नजूल तक थी। अब ये आ जाएगा तो तुमने उसको छोड़ना। ये ऐसे कि आईफोन 3 था तो 4 आ गया तो लोग 4 ले लेते हैं, 4 आ गया तो 5 आ गया 6। अब ये कंपनी तो नहीं दावा करती कि आईफोन 6 इज द लास्ट वन, लेकिन अल्लाह ने बता दिया था कि आखिरी नबी आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरान आएगा। इनकी किताबों में हमारे कुरान का, हमारे नबी का, सहाबा कराम का तस्करा मौजूद है। तो अल्लाह ताला कहता है कि बस इसके ऊपर अमल करो, जब तुम ये करोगे उफी भी अहदी को, मैं भी तुमसे अपने वादे पूरे करूंगा। चलिए यहाँ हम उम्मत मुस्लिमा बनते हैं थोड़ी देर के लिए। आयत तो इस वक्त मेरे और आपके सामने है, इस वक्त बनी इसराइली तो नहीं सुन रहे। अल्लाह मुझे और आपको कहता है उफू भी अहदी, तुम मेरे अहद पूरे करो। कौन से? कुरान पर अमल के और इस इस्लाम को दुनिया में लगाने के और इसको नाफिज करने के। कर दो, अल्लाह क्या करेगा? उफी भी अहदी को, मैं भी तुमसे अपने वादे पूरे करूंगा। अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ आती है, लेकिन ये मशरूत है, कंडीशनल है। आज आप अगर अल्लाह के साथ अपने वादे पूरे करें तो फिर दुनिया भी देखेगी और हम भी देखेंगे कि अल्लाह कैसे मुसलमानों की मदद करता है। वह या फरहबून, और तुम मुझी से डरो। इसकी क्या जरूरत हुई? क्योंकि इनके जो उलमा थे उनके दिलों में लोगों का डर भर गया था। और याद रखिए कि लोगों का डर अल्लाह की इताअत का शौक खत्म कर देता है। वामिनु बिमा अंज़ल्तु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिह, और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ। कौन सी किताब है ये? लिख लें कुरान। ये इस किताब की ताईद में है, यानी ये वेरीफाई करती है उस किताब को जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद थी। कौन सी है? तौरात। दोनों पे लिख लेंगे, साथ ही साथ आपको समझ आ जाएगा कि इस कुरान पे अमल ला करो, क्योंकि ये तुम्हारी तौरात को वेरीफाई कर रही है कि उसके अगेंस्ट तो नहीं है। बस सबसे पहले तुम ही इसके मुनकिर ना बन जाओ, थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को ना बेच डालो और मेरे गजब से बचो और बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबे ना करो। ये था इनके स्कॉलर्स का मसला। तौरात की आयतों को चेंज कर देते थे क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तौरात और इंजील के लिए अल्लाह का ये वादा नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला इन लोगों को आज़माना चाहते थे। दूसरी बात है कि चूंकि उसके बाद आखिरी किताब आनी थी, वो एक टाइमिंग गाइडेंस थी, यानी एक टेम्परेरी वर्जन ऑफ कुरान था तौरात और इंजील, तो लिहाजा इन्होंने उसमें इतनी खेरा फेरियाँ की कि जो मसला पसंद ना होता उसके आगे कुछ लगा देते या उसके पीछे कुछ रखते, या कभी कभी उस पर वाइटो ही फेर देते। ये उनके उलमा की आम कहानियां थी। इसके बहुत सारे वाकयात तफसीर में आपको मिलते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, और देखो जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश ना करो। ये कौन सा हक है? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच है। मदीना में रहने वाले बनी इसराइलों को यकीन था कि ये शख्स वही है जिसका जिक्र हमारी किताबों में था, लेकिन इसके बावजूद नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? आप आगे पढ़ेंगे ही नहीं आयतों में कि ये तो इंतजार कर रहे थे। देवर वेटिंग फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम। जब मदीना के यहूद का मुकाबला कभी किसी और कौम से होता, या मक्का या मदीना में रहने वाले कुफार से होता, तो ये क्या करते थे? तौरात के वो सफ़े खोलते जिस पे लिखा हुआ था नबी सल्लम की आमद की खबरें, तो फिर उस सफ़े को खोल के दुआ करते थे कि अल्लाह वो नबी भेज जिसकी तू आमद की खबरें देता है, ताकि हम उसके साथ मिलकर इन मक्का वालों को मजा चखाएं या मदीना वालों को चखाएं। तो जब आ गया तो क्या किया? दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही विल कम फ्रॉम बनी इस्माइल। ओनली प्रॉब्लम ये तासु। इंसान जब ये सोचते ना कि हक सिर्फ मेरे गिरोह के पास है और उसके बाहर सब गलत हैं, तो ये हालात हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वाकीमु सलात वातु ज़कात वरकौ मा राकीन। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं तुम भी इनके आगे झुक जाओ। ये मैसेज है इनको मुसलमान होने का, क्योंकि बनी इसराइल की नमाज में रुकू नहीं था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम रुकू करो, यानी बी मुस्लिम। अतामुरूना अन्नासा बिलबिर्रि वतंसौना अन्फुसकुम। क्या तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? वअन्तुम तत्लून अल किताब। हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अकल से बिल्कुल काम नहीं लेते? आदत क्या थी इन लोगों की, जब किसी दूसरे को मुसलमान होता देखते, इस्लाम पे आता देखते, कहते बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश, वेरी गुड, तो कहा जाए आप भी कर ले। नहीं, हम कहाँ करेंगे, हम तो गुनाहगार लोग हैं। आज भी लोगों का ये ट्रेंड है, आप किसी को बताएं मैं कुरान पढ़ रही हूँ, वो कहेंगी बहुत अच्छा कर रही है माशाल्लाह, तो कल से आंटी आप भी मेरे साथ चलें, तो नहीं बेटा मैं तो बीमार हूँ। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं ना, यानी ये हम किसी ऐसे को नहीं कह रहे कि जो मजबूरी में ऐसा कर रहा है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि लोग खुद अच्छा काम ना भी करें लेकिन दूसरों को अच्छा काम करता देखकर खुश होते हैं। तो इसका जिक्र अल्लाह ताला ने करके फरमाया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला। सब्र और नमाज से मदद लो। कौन सा सब्र? जो दीन हक पर हो। आज उम्मत मुस्लिमा को इस सब्र की जरूरत है। जिस रब की खातिर सब्र कर रहे हो इसी की इबादत करो और ऐसे काम करो कि अल्लाह की मदद तुम्हारे पास आए। आज भी कभी कभी इन मुसलमानों को कुछ खबरें इधर उधर से मिल जाती हैं, कोई इल्जाम कोई कुछ, तो अल्लाह कहता है सब्र करो, मदद मांगो अल्लाह से। ये दो हथियार हैं, याद रखिए, एक हाथ में सब्र हो और दूसरे में नमाज हो, तो आपके सामने अल्लाह की मदद होगी। डोंट बी रिएक्शनरी। सब्र यहाँ रिएक्शनरी होने के मानों में भी है कि ऐसे जुमले ना बोलो, ऐसी गलत बातें ना करो कि अपने आप को पीछे करो, और मजलूमियत वाला नहीं बल्कि ऐसा सब्र करो कि जिसको देख कर लोग कहें कि मुस्लिम इतने अच्छे होते हैं। आप देखिए ये भी तो सब्र है ना, कि आप थोड़े पे कनात करते हैं। तो जब एक इंसान इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह की रजा पे राजी होता है तो वो भी साबिर है। फिर उसके बाद फरमाया वस्ताइन बिसब्री वसलात, और साथ व इन्ना लकबीरतुन, और बेशक ये है बहुत मुश्किल, यानी नमाज भी मुश्किल है, सब्र भी मुश्किल है। किस पे आसान है? इल्ला अलल खाशीन, आजजी करने वालों के लिए आसान है। आप देखिए नमाज शुरू में बहुत मुश्किल लगती है, आदत ना हो तो मुश्किल है, करते जाएंगे आसान होगा। ये ऐसे ही जैसे एक नया कपड़ा पहनते हैं ना, तो शुरू में अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन चुभता है, अकड़ा अकड़ा लगता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन जो ही आप उतार के रात के घर के कपड़े पहनते हैं तो कितना इजी फील करते हैं। बस यही है दीन सीखने का तरीका। अगर नमाज की आदत नहीं, करते जाएं करते जाएं, आसान होगा। जमीन पे बैठने की आदत नहीं, बैठते जाएं बैठते जाएं, आसान हो जाएगा। लिखने की आदत नहीं, लिखें। सुनने की आदत नहीं, सुने। जिस काम को आप अच्छा करना चाहते हैं उसको करते रहें। हमारा हाल क्या है कि हम उस काम को छोड़ देते हैं, तो वो तो कभी भी फिर अच्छा नहीं होगा। और जब कभी इंसान को ऐसा लगे तो अल्लाह ताला कहते हैं आखिरत को याद कर लो। मुझे और आपको भी जब अल्लाह की कोई बात माननी सुननी उस पर अमल करना मुश्किल लगे तो क्या करें, याद करो किसको, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। हम अगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए ये मुश्किल नहीं जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना है और इसी की तरफ पलट कर जाना है। आखिरत की याद नेकियों को आसान कर देती है। कितने दिन की ये दुनिया, हमें कितने को दिन दीन का सब्र करेंगे, लेकिन उसके बाद जजा कितनी ज्यादा मिलेगी ये हम सब खुद से पूछ सकते हैं। इसलिए कभी अल्लाह की कोई बात मुश्किल लगे तो उस वक्त कहा करें कि मैं थोड़े दिन अल्लाह की मान लूं, फिर बहुत दिन मैं अल्लाह को मनाऊंगी। आप देखिए कि जब एक इंसान अपनी खुशी से कोई काम करता है तो असल काम भी तो वही होता है ना। अगर हम अपनी खुशी से कोई काम नहीं करते और मारे बांधे करते हैं तो उसकी वो वैल्यू नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं खुशी से काम करो। दोबारा आप देखिए दूसरा खिताब है बनी इसराइलियों को, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी इस नेमत को जिससे मैंने तुमको नवाजा था और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। इसको हाईलाइट करें, ये कब अता की थी, जब तक नबी सल्लम नहीं आए थे। दे वर चोजन, रियली अल्लाह ने इनको गाइडेंस दी थी, लेकिन इनके अंदर से जब आखिरत का खौफ खत्म हुआ तो फरमाया इनका हाल क्या हुआ, उसी का इलाज बताया जा रहा है। वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन नफ्सिन शैयम वला युक्बलु मिनहा शफा। और डरो उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम ना आएगा और न किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी और न किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा और न मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी। ये है क्यामत के दिन के बारे में खुशफहमियां। अगर आप यहां तीन चीजों को गौर करें, नंबर एक कि किसी नफ्स को मेरे बदले में अल्लाह पकड़कर आग में डाल देगा तो मैं बच जाऊंगी। दूसरी चीज है शिफात, किसी बुजुर्ग वली की सिफारिश काम आएगी। उनका कल ख्याल क्या था कि नबी आएंगे और हमारी सिफारिश करेंगे। आज अगर उम्मत मुस्लिमा को इस आयत की रोशनी में देखें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज हमारा भी यही हाल है? जहां भी कोई अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करेगा ना, अब आप देखिए कि हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़े होने का फितरी तौर पर डर मौजूद है, लेकिन होता क्या है कि जब कुछ खुशफहमियां होती हैं, या फिर वापस अपने जहन को उसी सिनेरियो में ले आइए कि जब दीनदार लोगों को इस तरह की खुशफहमियां दे देते हैं कि फलां बुजुर्ग तुम्हें बचा लेगा, फलां की नजर दे दो वो तुम्हारी मदद करेगा, फलां वली की कब्र पे जाओ चढ़ावा चढ़ा दो कहीं तेल डाल दो, तो आप फिर बताइए कि लोगों को अमल की क्या जरूरत है। आप अपने बच्चे पे इसको लीजिए, आपका बच्चा जिसको आप इतनी मेहनत से पढ़ा रही हैं तो आप उसको कहते हैं कि बेटा पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। अगर उसी स्कूल में किसी टीचर के साथ उसकी कोई गठजोड़ हो जाए, डोंट वरी मैं तुम्हें आंसर्स बता दूंगी। एग्जामिनर से उसकी कोई बात चल जाए कि अच्छा मेरी यहाँ से बात मान लो तो तुम्हें मैं नंबर दे दूंगा, पेपर बता दूंगा और तुम्हें फर्स्ट लगा दूंगा, किसी वजीर से बात करके आप पहले से डिसाइड करवा ले कि आपका बच्चा फर्स्ट आएगा, तो सच बताइए आप का बच्चा पढ़ेगा? और क्या आप उसके लिए इतनी मुश्किल सहेंगी, उसको ट्यूशंस पढ़ाएंगी? नहीं करेंगी। तो आखिरत के बारे में जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा अमल बदल जाता है। आज भी जो मुसलमान हमें अपने इर्द गिर्द बेअमल दिखते हैं, पीछे कहीं ना कहीं को खुशफहमी है। फुलां बचा लेगा, उसका पल्लू बचाएगा, उसका बचाएगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारी खुशफहमी है। वला युखज़ु मिन हादलुन, कोई किसी के बदले में नहीं होगा। यानी बेटा जुर्म करे तो उसके बदले में बाप नहीं जाएगा, माँ कर लेगी तो बच्चा नहीं जाएगा, शौहर के बदले में बीवी नहीं जाएगी। वला हुम युनसरून, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिलेगी। आज मैं और आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें, क्यामत जब आएगी मेरे साथ क्या होगा? आप देखिए कि मैं और आप ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, कि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। तो आज इस कुरान को पढ़ते वक्त हम सब अपने लिए नियत करें कि अल्लाह हमें आखिरत की सही समझ दे दें, क्योंकि ईमान बिल आखिरा हमारे इस्लाम का तीसरा बड़ा पिलर है। पहला तौहीद, दूसरा रिसालत और तीसरा ईमान बिल आखिरा। इन तीनों में जब खराबी आती है ना किसी एक में या तीनों में, तो अमल बिगड़ जाता है। जैसे किसी दरख्त की जो जड़ें हैं अगर उसमें घुन लग जाता है तो ऊपर से आप देखते हैं कभी फल नहीं आता, कभी उसमें कीड़ा पड़ जाता है और कभी कुछ और होता है, खराब किस्म का फल आता है। इंसानों के अमल पे लोग बातें करते हैं। अक्सर किसी से बात करें वो आके कहेंगे नमाज पे दर्स दें, पर्दे की बात करें, सूद की बात करें, तो मैं कहती नो इट्स नॉट द राइट वे। अल्लाह के नबी सल्लम ने सहाबा कराम के साथ 13 साल तक सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाए थे, या आप कह लीजिए कि इस्लाम की तरतीब क्या है, सबसे पहले लोगों को अल्लाह की मार्फत दो, अल्लाह कौन है, अल्लाह की जात, उसकी कदर, उसकी मोहब्बत, उसकी नेमतों का एहसास, फिर नबी सल्लम का मुकाम, रसूल कौन होता है, वो हीरो नहीं है कि आप सिर्फ उनके नाम पे नाते पढ़ें या आप उनके लिए कुछ महफिले सजाएं। रसूल एक राहबर होता है, एक गाइड होता है, रोल मॉडल होता है, वो चलता फिरता आपके लिए एक नमूना है। और आखिरत, मरने के बाद तुम्हारे साथ होना क्या, करो मस्ती फिर देखना क्या होगा। जब ये तीन चीजें अंदर दिमाग में रच जाती हैं तो ये कभी हो नहीं सकता कोई नमाज ना पढ़े, ये हो नहीं सकता कि हराम में पड़ जाए, और ये कभी नहीं हो सकता कि एक औरत होने के नाते अपने आप को मुश्किलात में डाल दे। आज इस वक्त उम्मते मुस्लिमा को ये सबक पढ़ाने की जरूरत है। ऊपर से इम्पोज करेंगे ना कुछ चीजों को तो वक्त के साथ साथ वो छोड़ देंगे। वजह क्या है? क्योंकि वो ऊपर की चीज है। आप देखिए कि असल सेहत कौन सी होती है, जो खाने के साथ अंदर से हेल्दी है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आप बहुत अंदर से सेहत महसूस करते हैं, आपका चेहरा फ्रेश होगा, आप भागेंगे दौड़ेंगे खाएंगे पिएंगे खुश रहेंगे ना। लेकिन अगर अंदर बीमारी हो और रंग पीला है, आप उस रंग को बदलने के लिए चेहरे पे फाउंडेशन लगा लें, फेस पाउडर लगा लें, आप उसको चमका लें, कितनी को देर वो खूबसूरत रहेगा, जितनी देर उस चीज का असर है। असल सेहत अंदर की है। अंदर ईमान की सेहत आ जाएगी ना तो हमारे अमाल खूबसूरत होंगे। तो आज अगर मुझे और आपको कोई काम करना है, अपने बच्चों पे, अपनी नस्लों पे, अपने पे, अब किसी पे भी, हर वो इंसान जिसके अंदर अभी इस्लाम की वो मोहब्बत नहीं दिख रही, तो आपको मुझे सिर्फ तीन टॉपिक्स पे बात करने का हक है। दैट्स इट। डोंट टच एनी गुड डीड जब तक कि उनके अकीदे में अल्लाह की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आखिरत की बात ना आ जाए।